बहुत अच्छा चिंतन सभी करें, अपने से बात करें संगम युग पर, क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए। संगम युग पर क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, जो कर लेना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, इसको अपने गहरे चिंतन में लाएं सभी, कि हम इसी जीवन में, इसी दिनचर्या में, अपने इन्हीं साथियों के साथ रहते हुए, जो परिवारों में रहते हैं वो अपने परिवार में, क्या और क्या अच्छे से अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, या हमारा जीवन समस्याओं में लिप्त होकर उलझता है। बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, संगम पर अचानक कुछ भी आता है, अचानक जो बाबा ने अचानक की बात कही है बार बार, केवल वो मृत्यु के लिए नहीं, विनाश के लिए नहीं, अचानक कुछ भी आता है, एक कड़ी से कड़ी परीक्षा किसी के सामने आ जाती है, उसमें अपनी स्थिति को अचल डोल रखना, इसके लिए हमारे पास काफी बल है, शक्तियां हैं। मुझे अभी 2-3 दिन में 2 के ऐसे समाचार मिले जो सोचते भी नहीं थे, मन न चित अचानक सब कुछ हो गया, खेल इधर से उधर हो गया, उनकी समझ में नहीं आया क्या हो गया और क्या करें। एक माताजी ने सुनाया, वो मधुबन आ रही थी, उसका लड़का 17 साल का शायद तैयारी करा रहा था उसकी, इसने इसको कहा जाओ बाजार से ये चीज ले आओ, वो बाजार गया, वापिस आया, आया ही था खड़े ही चक्कर आया, गिरा और मृत्यु, कुछ भी नहीं, माताजी को अपना प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मृत्यु इतनी अचानक हुई, माताजी ने अपने को संभाला, बहुत बहुत अच्छी स्थिति रखती थी, बहुत अच्छी, उसकी स्थिति देखकर हमें बाबा पर और उसके ज्ञान पर गर्व होता है। ऐसी भी अनेक माताएं हैं जो विकट से विकट परिस्थिति को सहज भाव से पार कर लेती हैं, नहीं तो 17 साल के बच्चे की इस तरह अचानक मृत्यु लोगों से सहन नहीं होता है। तो हम सभी वो सब कुछ कर लें जो हमें कर लेना चाहिए, चिंतन की बात है। जब तक करने का इरादा मजबूत नहीं है तब तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सभी एकांत और अंतर्मुखता के द्वारा इस पर अपने से बातें करेंगे। रोज सभी को अच्छे पुरुषार्थ के लिए एकांत, उसमें स्वचिंतन, अपने से बातें करना, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या बाबा हमसे चाहता है, क्या हम इस संसार को और अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, इस पर चिंतन अवश्य करना है। अपने को इतना बिजी नहीं कर देना है कि हम अपने इन महान कर्तव्यों को भूल जाएं। ठीक है, क्या विचार है अर्जुन भाई? ठीक है, संसार में दुख अशांति तेजी से बढ़ रही है, ये लोगों से मिलकर उनके हाल देखकर दिखाई देता है, रोग भी बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहे हैं और शारीरिक रोग भी बहुत उग्र रूप लेते जा रहे हैं, मानसिक रोग भी बहुत भयानक स्थिति लेते जा रहे हैं। ऐसे में अभी एक फोन था मुझे, अचानक उसकी युगल को नर्व सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई, ब्रेन में ब्लड जा ही नहीं रहा, वेंटिलेटर पे आ गई, अचानक हो गया भाई। डॉक्टर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या हुआ, क्या किया जाए। उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी, बात की उसने मेरे से, बहुत अच्छी स्थिति थी, बात से ही पता चल रहा था। तो हमें अपने को भी संभालना है और दूसरों को भी, और जो अपनी स्थिति को संभाल लेंगे वही दूसरों को भी संभाल पाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति यदि हमारी बिगड़ जाती है तो परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना है। तो सभी अपनी दिनचर्या में एकांत का समय अवश्य निकालें। सभी शाम का समय हो, सवेरे हो, जैसे सवेरे जब उठते हैं योग के बाद, तैयार होने के बाद, मुरली तक, इस बीच में हमारे पास बहुत अच्छा समय होता है। तब हर मनुष्य का चिंतन भी बहुत सुंदर चलता है, उसमें चिंतन करना चाहिए। यह श्याम का इस समय कोई भी आधा घंटा लेकर एकांत में चिंतन अवश्य करना चाहिए। योग में एकाग्रता के लिए एकांत और अंतर्मुखता सबसे बड़ी आवश्यकता है। एकांत में ही हम अपने को देखते हैं, अपने पर हमारी दृष्टि होती है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमारा चिंतन होता है। सभी को याद होगा, फिर से याद कर लें, बाबा हम सभी को क्या क्या होमवर्क दे गए हैं 6 मास का। अब 2.5-3 पूरे हो रहे, 2.5 तो पूरे हो गए। पहला काम, व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ में नो इंटरेस्ट, बस इतना ही याद रखेंगे, नो इंटरेस्ट इन वेस्ट। चाहे सुनना हो, चाहे बोलना हो, चाहे व्यर्थ की चीजों में बुद्धि जाती हो, उससे अपने को मुक्त करना है। क्योंकि अगर व्यर्थ बढ़ता जाता है तो एक बड़ा नुकसान मनुष्य आत्मा को होता है। आप में से कईयों को अनुभव हो सकता है, हो, व्यर्थ बढ़ने से प्योरिटी की पावर धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। अपवित्रता का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव आत्मा को अपने वश में लेने लगता है। इस पे ध्यान देना है सभी को, जो लोग व्यर्थ में रहे हैं। ऐसे अनेक कुमार और कुमारियां ज्ञान छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें जाना ही है। इसमें वो कोई सोचे कि हमारे बाबा के यज्ञ को कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कमजोर आत्माओं का यज्ञ से बाहर हो जाना ही कल्याणकारी है यज्ञ के लिए। 10 आत्माएं भी मोस्ट पावरफुल हों वो काफी हैं, मुकाबले बस इसके कि 100 आत्माएं व्यर्थ संकल्पधारी हों। तो हमें ध्यान देना है, व्यर्थ संकल्पों के प्रवाह में अपनी पवित्रता के बल को छीन नहीं करना है, इसको कमजोर नहीं होने देना है। क्योंकि जहां और चीजों का प्रभाव है वहीं कलयुग का प्रभाव युवा वर्ग पर विशेष, वो अपने को बिल्कुल अच्छा समझते हैं, उस प्रभाव से हमें अपने को मुक्त रखना है। मुझे ऐसे भी कुमार मिलते हैं यात्राओं में जिन्हें देखकर, जैसे मैंने कहा, हमें बाबा पर और उन कुमारों पर भी गर्व होता है। मैं उनको नाम ही दिया करता हूँ, तुम तो पूर्वज कुमार हो। 25 साल, 30 साल, 35 साल हुए, सुंदर जीवन जीते हुए। कुछ लोग साधारण जीवन जी रहे हैं, कुछ कुमारों का बहुत अच्छा जीवन है, वो अपने जीवन से पूर्ण तरह से सेटिस्फाइड हैं। वो समझ रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल गया इस जीवन में। कोई थोड़े लंगड़ाते चलते हैं, उनकी अलग बात, पर मैं देखता हूँ कि बाबा के संपूर्ण यज्ञ में ऐसे कुमार कुमारियां भी हैं जिनके पवित्र वाइब्रेशंस का बल सारे संसार को मिलता है। वो सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं और बाबा उनका सम्मान करता ही है। स्थूल में भी होता रहता है, अब यज्ञ में भी हो रहा है, लेकिन बाबा भी उन आत्माओं को देखकर सम्मान की दृष्टि, स्वमान की दृष्टि से उन्हें देखते हैं, देते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, एक बाबा की मुख्य व्यर्थ से मुक्त, क्योंकि जो व्यर्थ से मुक्त होंगे वो ही आगे चलकर संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। सभी लक्ष्य बना लें, हमें अपने को इतना समर्थ बनाना है कि हम संसार के काम आ जाएं। कौन कौन चाहेंगे आप में से ऐसा? हम संसार के काम आ जाएं, अपने काम आए हर जन्म, अपने परिवार के काम आए हर जन्म, जो समर्पित हो गए वो बाबा के काम आ रहे हैं, संसार के काम आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। कुमार जो भी समर्पित बैठे हैं, बहने बैठी हैं, हम भगवान के काम आ गए इस जन्म में तो क्या फायदा होगा? जन्म जन्म वो हमारे काम आएगा। हम उसकी आवाज सुनते होंगे तो भक्ति में हमें लगेगा वो हमारी सुनता है, नहीं तो हमारे मुख से भी निकलेगा भगवान सुनता नहीं, बहरा हो गया क्या, सो गया क्या, जैसे भक्त कहते हैं, क्या हो गया, हमारी भक्ति अधूरी है, सच्ची नहीं है, क्या है? ये संगम युग का इफेक्ट चलेगा, हमने सुनी है उसकी बात, सुनकर उस पर काम किया है, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है वो हमारे लिए कहा है ना, हमारे कल्याण के लिए कहा है, उस पर हम बहुत ध्यान देंगे। ये नहीं कि बाबा तो कहता ही रहता है, आप में से तो कोई ये सोचता नहीं है, पर कोई भी कभी सोचता हो उसको इस संकल्प से मुक्त होना है, तो व्यर्थ से सभी मुक्त होते चलें। जैसे व्यर्थ बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे मोटे रूप से जिस व्यक्ति के पास पढ़ाई में फिजिक्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स हो, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताबें तो नहीं पढ़ेगा, खरीदेगा, है ना, सीधी सी बात। वो उनकी क्लास में जाकर भी नहीं बैठेगा कि लेक्चरर क्या पढ़ाता है, सुनता हूँ थोड़ा। हम भी कुछ चीजों के लिए ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर दें, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। पहली बात तो यही कि अब हमने पवित्रता का मार्ग चुन लिया है, अपवित्रता हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। दृढ़ता कर दें, बहुत बहुत मजबूती के साथ काम कर लें ये, तो उसका खिंचाव भी नहीं होगा। हमने विश्व कल्याण का सब्जेक्ट चुन लिया है, किसी का कल्याण करना अब हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भरने को अपना ध्येय बना लिया है, व्यर्थ संकल्प हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हम आत्मोन्नति के मार्ग पर हैं, सत्य मार्ग एक बार ही हमें मिलता है। अगर किसी ने आप में से मार्ग ढूंढा हो सत्य, तो उसे पता होगा कि बाबा ने कितना सुंदर सत्य मार्ग हमें दिया है। अब स्वोन्नति हमारा सब्जेक्ट है, पर चिंतन पर दर्शन हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारी इसी यात्रा में एक व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी, वो पास ही बैठा था, कहा मुक्ति का मार्ग चाहिए, वो भी कुछ बता रहा था, ये करना पड़ता है, आप लोग क्या करते हैं। मैं सोच रहा था कि देखो शास्त्रों में साधु संन्यासियों के पास जितने भी लोग आज ज्ञान दे रहे हैं बाहर, उनके ज्ञान की अंतिम पहुंच कहाँ है? हम आत्माएं हैं, ये बता देना, ये किसी को समझा देना, ये उसे रियलाइज करा देना। शास्त्रों की अंतिम पहुंच, अंतिम डेस्टिनेशन, मंजिल यही है। और यहां से हमारा क्या शुरू हुआ? पहला पाठ। असली ज्ञान तो इसके आगे ही है, इससे पहले तो ज्ञान है ही नहीं, इससे पहले तो केवल ज्ञान की खोज है। तो कितना सरल मार्ग, सुंदर मार्ग हमें बाबा ने दिखा दिया है। हमारी उनसे बात हुई, वो मुक्ति चाहते थे। जो कोई मुक्ति चाहता है, मैं ये नहीं कहता मुक्ति बेकार है, इससे कुछ मिलता नहीं है, जैसे हमारे कई भाई बहने समझा देते ना, अरे मुक्ति से क्या, जीवन मुक्ति में जाओ ना। वो मानते नहीं, क्योंकि मुक्ति उनका परम लक्ष्य है। सीधी सी बात कि मुक्ति तब मिलेगी जो जन्म जन्म के पाप और विकार आत्मा में आ गए हैं, उसको नष्ट करो। ये बात सभी स्वीकार करते हैं। नष्ट करने के लिए राजयोग है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो देखो, बाबा ने हमें कितना सुंदर मार्ग दिखाया है। शास्त्रवादियों को तो ये भी क्लियर नहीं कि मुक्ति में जाना कहाँ है, क्योंकि मुक्ति धाम का ज्ञान नहीं है। ये भी पता नहीं कि मुक्ति में परम आनंद है या कुछ अनुभूति नहीं है। ये भी पता नहीं कि कितना समय वहां रहना है फिर लौटना है। दो मत हैं, ये विरोध विवाद के मत हैं दोनों। शास्त्रों के अनुसार हम सबको कितना स्पष्ट ज्ञान है, ये है, तर्कों की जरूरत नहीं रही। संपूर्ण सत्य जिनके पास आ जाए, संपूर्ण सत्य की पहचान है। बोलो, आगे वाले बोलो। संपूर्ण सत्य ज्ञान जिनके पास है, उनका मन का भटकना शांत। अगर मन विचलित हो रहा है, चाहे विकारों की ओर, चाहे व्यर्थ की ओर, चाहे परचिंतन की ओर, चाहे और किसी उलझन की ओर, संपूर्ण सत्य ज्ञान का अभाव है। इसे हमें भरपूर करना है। दूसरा होमवर्क बाबा देकर गए हमें, स्वराज अधिकारी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर बात है। मालूम है इसकी सुंदरता का? सुन लें आप थोड़ा थोड़ा। एक कुमार भाई मेरे से बात कर रहा था, उसने कहा, वो अच्छा ऑफिसर है, बहुत अच्छा कुमार है, कहा मेरे अंदर लीडरशिप का गुण है बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छे ढंग से काम कराता हूँ अपने ऑफिस में, सब खुश रहते हैं, मैं भी लाइट रहता हूँ। मेरी उससे चर्चा हुई कि देखो, जो व्यक्ति स्वयं का लीडर बन जाता है, वही सच्चे अर्थों में दूसरों का सफल लीडर बनता है। लीडर तो बहुत है दुनिया में, लीडर आजकल तो लीडर नाम लेने के लिए लोग राजनीति में जा रहे हैं ना, पर उन्हें दूसरों को लीड करना आता नहीं। जब तक अपने लीडर न बने, तब तक हम दूसरों के लीडर नहीं बन सकते। पहले किसके लीडर? सबसे बड़ी चीज मन बुद्धि के लीडर, शरीर और कर्मेंद्रियों के लीडर, अपने संस्कारों के लीडर। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। गुइये, आप में से कौन कौन अभ्यास कर रहे हैं मैं स्वराज अधिकारी हूँ? बहुत अच्छा, बहुत भाई बहने हैं। मैं एक चीज पर आपका ध्यान दिलाऊंगा, बहुत गुड फीलिंग में आते चलें। मैं आत्मा, हे मन, तुम्हारी मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। हे मेरी कर्मेंद्रिये, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। हे मेरे शरीर, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। बढ़ाएं इस अभ्यास को, साथ में स्वमान भी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और प्रकृति का मालिक हूँ। ये तीनों स्वमान इस बार हम लेंगे, स्वराज अधिकारी, प्रकृति का मालिक, मास्टर सर्वशक्तिमान। अब जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, उस पे ध्यान देना। डॉक्टर भी बैठे हैं, सीमा बहन, आप बहुत अच्छा लोगों को सिखाएं और भी जो डॉक्टर बैठे हैं। देखिए हम मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा कहते हैं स्वमान की सीट पर बैठकर शक्तियों को ऑर्डर दो तो शक्तियां मानेंगी ही, ये बात हमने सुनी है। एक ऐड कर लें इसमें, स्वमान की सीट पर बैठकर अपने शरीर की कर्मेंद्रियों को, शरीर के अंगों को भी ऑर्डर दो, वो भी मानेंगे। पहले सुन लें, मैं आगे बढ़ाता हूँ इस बात को। स्वमान की सीट पर बैठकर अपने अंगों को भी, शरीर की कर्मेंद्रियों को भी, इस शरीर को भी ऑर्डर दो, ये भी मानेंगे। इसका प्रयोग करना है सबको। अब सुन ले आप प्रयोग, जिन जिन को डायबिटीज है ना, वो एक अभ्यास करेंगे छोटा सा। यहाँ पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज अपने फंक्शन ठीक नहीं करती, उससे इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता तो डायबिटीज बढ़ जाती है ना। आप ये अभ्यास करेंगे, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे राइट हैंड में संपूर्ण हीलिंग पावर है, और अपना राइट हैंड पैनक्रियाज पे रख दो और ऑर्डर दो, एक्टिव हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। मानेंगे या नहीं? हमारे हैं, अगर हमें फीलिंग होगी मैं इनका अधिकारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो शरीर के ये अंग कर्मेंद्रिया भी हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। आत्मा में बहुत शक्ति है शरीर के हर अंग को स्वस्थ करने की। ये सभी तीनों अभ्यास बढ़ाएंगे। कभी आपका शरीर थक जाए ना, तो ऑर्डर देना कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अब जरा मुझे काम करना है आधा घंटा, आधे घंटे के लिए चुस्त हो जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ, और रिजल्ट देखना। सभी करें, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो अच्छे अनुभव हो जाएंगे। अपने शरीर के रोगों को भी ठीक करने की एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी थेरेपी, एक अच्छा अनुभव हमारे पास आ जाएगा, तो शरीर के रोगों से भी हम परेशान नहीं होंगे। मैंने पहले भी आपको सुनाया था, मुझे भूल गया यहाँ सुनाया या नहीं, फिर सुन लें आप। गुजरात के एक प्रोफेसर मेरे पास आए, गुजरात के भट्टी का टर्न था, विनय भाई नाम है, अभी बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे इस पार्क में आते हैं, तो कहा मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया, चला न जाए, हालांकि उनका शरीर हैवी नहीं है, पतले हैं, घुटनों में बहुत दर्द हो गया। कहा मैंने एक चीज यूज की, अपने घुटनों से और शरीर से बात की, हाथ रख दिए दोनों घुमाए और बात की, तुम तो मेरे मित्र हो, तुमने पूरा जीवन मुझे साथ दिया है, अब भी मेरे मित्र बन जाओ, फ्रेंडली हो जाओ, ठीक हो जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओ तुम। कहा मैं ऐसे बात करता रहा, हाथ घुमाया, कहा इतने ठीक हो गए हैं, मैं तो उठ सकता हूँ, अब चलना तो छोड़ो। देखिए ये हमारा शरीर भी प्यार चाहता है ना हमसे, हम जाने अनजाने में इस शरीर को भी निगेटिव थॉट्स, नफरत के थॉट्स, ओहो मेरे घुटने ये तो खराब हो गए, अब क्या होगा, बड़ा खराब हुआ, हम सोचते रहते हैं कुछ कुछ, तो हमसे निगेटिव एनर्जी, प्यार की कमी, इसके वाइब्रेशन शरीर को पहुंचते हैं। शरीर हमारा सबसे पहला साथी है ना, हमारा फ्रेंड है, फ्रेंडली व्यवहार करो, इससे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे जाएंगे। फ्रेंड जो बन जाता है वो साथ देता है ना, ये हमें साथ देगा। तुम हमारे फ्रेंड हो, तुम मेरे साथी हो, तुम बहुत अच्छे हो, संकल्प दो, इसका इफेक्ट हम देखेंगे। जैसे एक गुह्य बात इसी संबंध में मैं आपको, बहुत सुंदर डीप साइकोलॉजी की बात है और एक सुंदर प्रकृति का नियम है, किसी भी चीज से, किसी भी बात को यदि हम सम्मान दें, किसी व्यक्ति को प्रेम दें और सम्मान दें, तो वो व्यक्ति हमारे पास आएगा ना, और हम नफरत घृणा ईर्ष्या दें तो वो कभी नहीं आएगा। अब देखिए, मनुष्य अनजाने में कुछ गलतियां करता है, वो हमें जीवन में नहीं करनी है। हमारे सामने किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, उसका नाम हो रहा है, उसकी महिमा हो रही है, वो आगे बढ़ रहा है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा बस, बाकी सबका चिंतन आप स्वयं करना। दूसरों को क्या होता है, दूसरे को सफलता मिलता देख क्या होता है, दूसरों को ईर्ष्या होती है, अरे ये आगे बढ़ गया हम पीछे रह गए, ठीक नहीं हुआ, कुछ करो ये भी पीछे आ जाए। आजकल तो लेग पुलिंग का जमाना है ना, कुछ करो। हंसी की बात सुना दो, एक की दोनों टांगे बेकार हो गई, चलंजा था, तो दूसरी उसको हंसी में कह रही थी, बहनों की बात है, तुमने दूसरों की टांगे बहुत खींची होंगी इसलिए अभी तुम्हारी टांगे खींच रही हैं। अब तो फिजियोथेरेपी में जाती है ना, टांगे खींचती हैं, उनमें वो बड़े बड़े पत्थर बांधती है, वेट खींचो वही टांग, तुमने भी खींची होगी किसी की। उस दिन बाबा की मुरली में आया ना, बांधेलियों के लिए पति मारता है, तो बाबा ने हंसी में कहा ना, ऐसे ही कोई थोड़ा ही किसी को मारता है, तुमने भी मारा होगा। तो ये गुह्य रहस्य है, किसी को सफलता मिल रही है, हमें ईर्ष्या हो रही है, हमें उस व्यक्ति के प्रति कुछ कुछ हो रहा है, तो हम सफलता को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम सफलता का अनादर कर रहे हैं, हम सफलता से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं, पर व्यक्ति से क्यों नहीं कर रहे, उसकी सफलता देखकर। तो हमारा अपमान, हमारी घृणा, हमारा अप्रेम सफलता को जा रहा है, तो वो हमारे पास आएगी, कभी नहीं आएगी। इसलिए जिन चीजों का हम आह्वान कर रहे हैं प्यार सम्मान से, वही तो हमारे पास आएंगी। हम किसी धनवान को देखते हैं, सोचते हैं इन्होंने धन गलत तरीकों से कमाया होगा, अरे आजकल धनवान कोई ऐसे ही थोड़ा ही बन जाता है, गड़बड़ की होगी। तो हम किससे नफरत कर रहे हैं, धन से, हम उसका अनादर कर रहे हैं, तो धन हमारे पास क्यों आएगा। सीख लें इस थेरेपी को, इस थ्योरी को, आप अप्लाई करें अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र में, कि जो चीज हमें चाहिए उसको हम सम्मान दें, प्रेम दें, अपनापन दें, तो वो चीज हमारे द्वार पर आने लगेगी। ये बात सूक्ष्म है, तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। तीसरी कौन सी प्रेरणा थी बाबा की, समय और संकल्प, याद है ना, हर बार समय बहुत कीमती, एक एक सेकंड, और एक एक संकल्प बहुत महान। मैं आपको याद दिला दूं, मेरे को उस चीज का बहुत अच्छा नशा चढ़ता जा रहा है डे बाय डे, मैं चाहता हूं आप सब भी उस चीज पर कार्य करने लगे। पिछले सीजन की पहली मुरली का सबसे सुंदर महावाक्य विदेशियों के साथ, तुम्हारे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की, काम करें आप इस पे, अपने से बात करें, बाबा ने मुझे शक्ति दी है हर संकल्प को पूरा करने की, मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। अपने में आत्मविश्वास बढ़ाने, बिल्कुल ये संकल्प ले लें, मुझे बहुत सारे काम संकल्प से कर लेने हैं, क्योंकि मेरे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की। परेशान न हो, संकल्प का प्रयोग करें। कोई व्यक्ति हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारा कोई बड़ा काम, आप ग्रस्त में रहते हैं, आपके किसी काम में कोई व्यक्ति बाधक बन रहा है, कोई व्यक्ति आपको बद्दुआएं दे रहा है, क्या करो, बाबा ने क्या कहा, 10 दुआएं उसे दे दो, तो उसकी बैड एनर्जी जो आपको आ रही थी बद्दुआ की, वो रुक गई, वो नष्ट हो गई। 10 इसलिए बाबा ने कहा कि वो इतनी नष्ट हो जाए कि वापिस होकर उसको भी न जाए, क्योंकि अगर हम उसकी बददुआओं को वापस कर देते हैं तो उसको कष्ट पहुंचाएगी। तो हम 10 दुआएं दे दें ताकि हमारी प्योर एनर्जी उसकी निगेटिव एनर्जी को वहीं समाप्त कर दे। इसका भी प्रयोग करेंगे जीवन में। तो हम ये ध्यान दें कि एक एक संकल्प महान है, हमारे एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जो कुछ आज हैं हम, वो पास्ट के संकल्पों का रिजल्ट है, और जो आज हम सोचेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। बहुत पक्का करें इसको, इस बात को आप रोज सुने, अपने को पढ़ाएं की ट्रेनिंग दें। एक दिन करने से ये काम नहीं होता, बार बार सुने, बार बार सुनाएं लोगों को, तो पक्की हो जाए हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जो हम बार बार सोचेंगे उसका निर्माण होगा। हमारे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की। चौथी बात पर आ जाएं, बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है। याद है ना यज्ञवासियों को, सभी कर रहे हैं ये काम। हमने आप सभी को होमवर्क दिया था 15-15 मिनट, कौन कौन कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बाबा आपसे बहुत खुश होगा। हालांकि मैं इतना नहीं कर पाता, बाहर रहता हूँ, पर आपका शेयर थोड़ा थोड़ा मुझे मिल जाएगा तो मेरा भी भंडारा भर जाएगा। सभी ये काम करते रहें, कहीं भी यज्ञ में विघ्न आए ये सोचने की बजाय कि ये क्या हो गया, क्या करें, ये करें, वो करें, तुरंत संकल्प करो, मैं विघ्न विनाशक हूँ, यज्ञ का मालिक हूँ, अब यज्ञ का ये विघ्न नष्ट हो जाए। इतने सब भाई बहने एक साथ संकल्प करेंगे तो संकल्प की शक्ति विघ्न को नष्ट करेगी। परिवार में भी आपके विघ्न आ जाए, यही संकल्प करें, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब ये विघ्न नष्ट हो जाए। तो अपने संकल्पों के बल से हमें अपने सेंटर्स को, परिवार को, अपने जीवन को और इस महायज्ञ को निर्विघ्न बनाना है। पसंद है? जो नहीं कर रहे और ध्यान देंगे थोड़ा सा, इससे अपनी उन्नति बहुत होती है। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज जब हम दूसरों को देते हैं, यज्ञ को हम गुड वाइब्रेशंस दे रहे हैं, वो डबल होकर हमारे पास आ जाते हैं, बल बनकर। ये हमें भूलना नहीं है, जितने सुंदर वाइब्रेशंस हम संसार को देंगे वो बल बनकर, डबल होकर, पावर शक्ति बनकर हमारे पास लौट आता है। तो हमारी शक्तियां निरंतर बढ़ती जाएंगी। सिंपल सा नियम है, जो हम दूसरों को देते हैं वो हमें प्राप्त होता है ना। प्रेम देंगे प्यार मिलेगा, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा। हम अपने मन के संकल्पों के वाइब्रेशंस जैसे इस प्रकृति को देंगे, प्रकृति वैसा ही हमें वापस करेगी। प्रकृति हमारी पालना कर रही है ना, 5000 साल प्रकृति ने हमारी पालना की, और की है संकल्पों के आधार पर। जिसको जो कुछ प्राप्त है वो उसके आगे पीछे के संकल्पों का ही परिणाम है, चाहे अब के, चाहे पास्ट के, चाहे और पास्ट के। हम इस गति को तो नहीं समझते किन संकल्पों का इफेक्ट कब हमें वापिस होकर आ रहा है, पर ये संपूर्ण सत्य है, जैसे सुंदर संकल्प हमसे प्रकृति को जाएंगे, हमारे सारे संकल्प ही प्रकृति को जाते हैं। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर ही चलता है, इसमें शिव बाबा का इंटरफेरेंस नहीं है, भगवान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्रकृति और आत्माएं। आत्माओं के जैसे संकल्प हैं उसके वाइब्रेशंस प्रकृति में मिलते हैं, प्रकृति में वैसा ही निर्माण होता है, वापिस आता है। उसका इफेक्ट बहुत मनुष्यों पर भी हो सकता है। जैसे जो अश्वरतन हैं, उनमें एक एक रतन के वाइब्रेशंस प्रकृति में जब जाएंगे तो एक विशाल चीज प्रकृति की ओर से मनुष्यों को मिलेगी, तो एक को नहीं लाखों को मिल जाएगी, करोड़ों को मिल सकती है। जो आत्माएं भी उस अश्वरतन से जुड़ी हुई होंगी उस श्रेष्ठ चीज का इफेक्ट उन सब पर आ जाएगा। इसलिए पूर्वजों का बड़ा महत्व है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा महत्व किनका है? 108 रत्नों का, जिनमें 8 पहले 100। हम सबके वाइब्रेशंस इस संसार को चलाने में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। तो आज से क्या पक्का करेंगे? मेरे पास शक्ति है हर संकल्प को पूर्ण करने की, बस मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा रहे और योग अच्छा होता रहे। देखिए, जो कुछ ये बाबा बात कहते हैं ये उन पर ज्यादा लागू होती हैं जिनका योग रोज कितना हो? 4 घंटे अवश्य हो। 4 घंटे एक हायर कॉन्शियसनेस में रहना, एक इसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस, एसडीडीपन, स्वमान, इन सब के इफेक्ट में कम से कम 4 घंटे रहने वालों को ये सब सुंदर अनुभूति होंगी। तो हम यज्ञ को सुंदर वाइब्रेशंस देते चलें, सारे विश्व के यज्ञ को। और भी कोई बात थी? है? फरिश्ता बनना, संस्कार परिवर्तन करना, बाबा ने 1 साल का काम दिया था, है? बोलो। बेफिकर बादशाह लास्ट की बात थी, सबसे सुंदर बात थी वो, उस पर सभी काम करते रहेंगे। ज्वालामुखी योग, 8 बातें हो गई पावरफुल। बेफिक्र बादशाह, हाँ, सकाश देना ये यज्ञ को भी और विश्व को वाइब्रेशंस देना। बेफिक्र बादशाह है, इस पे ध्यान या चिंताएं आ गई हैं? माताओं को थोड़ी चिंताएं आ जाती हैं माताओं को चिंताएं? चिंताओं को क्या करेंगे अब? बाबा ने उसी में बोल दिया ना, सारे फिक्र बाबा को देकर फखुर ले लो, मैं को मेरे को तेरा। चिंताएं और परेशानियां तब तक ही हैं जब तक मैं जिम्मेदार, मेरी ये बात, मेरे ये बच्चे। और जैसे जैसे तेरे में बदलेंगे, संकल्प से बदलना है ना, भावनाओं से बदलना है। और फकुर कौन सा ले लेना है? फकुर नशा, जिससे हम निश्चिंत हो जाएं, बेफिकर बादशाह बन जाएं। कौन सा बोलो? जिसने लिया हो बोले हैं? धवल बाप के बच्चे। और बाबा बैठा है, और बोलो अब तो शुरू करो हैं? जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, बाबा से फकुर ले लो। कौन मेरा साथी है? कौन मुझे साथ दे रहा है? किसको मैंने अपनी जीवन नैया सौंपी है? सागर में तूफान है, लेकिन मेरी जीवन नैया का खिवैया कौन है? नशा गहरा होना चाहिए, मोटा नहीं। समर्पण भाव, किसको मैंने अपना जीवन समर्पित किया है? किसकी छत्र छाया हमारे ऊपर आ गई है? ये चीजें निर्भय बनाएंगी, निश्चिंत बनाएंगी, पर इसको चिंतन में लाने की जरूरत है। चिंतन नहीं तो विस्मृति, विस्मृति माना सो जाना। जैसे एक बहुत अच्छे पहलवान का कोई घर हो, बड़ा शक्तिशाली, सब उससे डरते हो, लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, वो सोया हुआ है, एक छोटा सा बच्चा उसके घर में घुसता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उठा के चला जाता है। पहलवान उठता है, देखता है चोरी हो गई, लोग भी उसे हंसते हैं, तुम कैसा पहलवान, तुम्हारे होते बच्चा चोरी करके ले गया, क्यों ले गया? पहलवान सोया था ना, हमारी भी शक्तियां अगर सोई होंगी तो चोर बहुत आएंगे। विस्मृति माना सो जाना, स्मृति स्वरूप होना माना जागृति। चाहे हमें कितनी भी ताकत हो, बाबा से हमें कितनी भी शक्तियां क्यों न मिली हो, लेकिन अगर भूले हुए हैं तो हम सोए हुए हैं, कोई भी चोरी करके चला जाएगा। तो हमें स्मृति स्वरूप रहना है, बेफिकर। बस ये संकल्प कर दो, व्यक्तिगत संकल्प कर लो अभी, मुझे इस संसार में बड़े बड़े काम करने हैं, संसार के काम आना है हमें। अभी भी मेरे पास तो ऐसे फोन कभी कभी आ जाते हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं, पर दो चार दिन में एक आ जाता है जो कहता है बचाओ इन्हें, करो कुछ। बाबा भी नहीं सुन रहा, बाबा से कनेक्शन नहीं रहता, कुछ करो, बिल्कुल मरने वाले हैं, बचाओ, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा केस जिस पे हर मनुष्य को दया आ जाए, दिल पिघल जाए, तो ये केसेस बढ़ने वाले हैं। डॉक्टर हाथ ऊपर कर देंगे, कुछ नहीं हो सकता भाई, क्या काम आएगा? या तो हमारे पुण्य कर्म या हमारी योग की स्थिति यानी बाबा, दो के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। समय पर मनुष्य को पुण्य ही काम आते हैं, सबसे बड़ी चीज तो पुण्यों का खाता है ना। अब हमारा योग भी पुण्य में आ जाता है, हमारी पवित्रता बहुत बड़ा पुण्य, हमारी यज्ञ सेवा बहुत बड़ा पुण्य, हम सुख देते हैं, सेवाएं करते हैं। ऐसे में लास्ट में एक छोटी सी विधि आपको बता देता हूँ। कोई केस आपके सामने आ जाए, अति बीमार हो, आपसे लोग रिक्वेस्ट करें आप तो योगी हो, कुछ मदद करो इन्हें, तो क्या करेंगे? एक छोटा सा तरीका और है, अपना एक दिन का पुण्य, अपना आठ दिन का पुण्य उस आत्मा को दान कर दो। बाबा को याद करो, संकल्प करो, मैंने आठ दिन में जो भी पुण्य किए हैं वो मैं इस आत्मा को समर्पित कर रहा हूँ, ये स्वस्थ हो जाए या ये इस विघन से, इस समस्या से मुक्त हो जाए। अगर आपके पास पुण्यों का बल होगा तो ये पुण्यों का बल उनकी रक्षा करेगा। ऐसे पुण्यों की शक्ति हमें आगे चल के बहुत आत्माओं को देनी है, इसलिए सभी यज्ञ निवासी विशेष रूप से पुण्यों का खाता बढ़ाते चले, निष्काम भाव से सेवा करने से, सेवाओं में दूसरों को संतुष्ट करने से, सेवाओं में सबको सुख देने से हमारा पुण्य बहुत बढ़ता है। किसी को भगवान से मिलाने से, मान लो कोई गरीब माता है, वो बाबा से मिलने नहीं आ सकती, आपने उसको आने जाने का टिकट दे दिया, वो भगवान से मिलके गई, बहुत बड़ा पुण्य हो गया या नहीं? ऐसे ऐसे पुण्य बढ़ाते चले, ये पुण्य हमारे भी काम आएंगे और दूसरों को बहुत काम आएंगे। तो सभी तीन समान हो गए, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर, एक मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल पर ग्लोब को सकाश, तीन मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल पर पांच स्वरूपों का अभ्यास, भूलना नहीं है सभी, ये दोनों काम चालू रखने। मधुबन में जो हमारा छोटा ग्रुप है वहां हमें बताया कि हम सब ये दोनों चीज कभी नहीं भूलते, एक मिनट में ग्लोब को सकाश, तीन मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में पांच स्वरूपों का अभ्यास, सभी इन पे ध्यान देंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, व्यर्थ से हम मुक्त होते जाएंगे। बहुत अच्छा है सभी, बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे। बाबा जब हमसे मिलने आए, हमें देखकर भगवान खुश हो जाए, वाह मेरे बच्चे वाह, पसंद है? कौन कौन ऐसा करना चाहेंगे? वेरी गुड, सभी करना चाहेंगे, ऐसी उमंग अपने मन में भर लेनी है। ओम शांति।